संतप्त मानस शांत हो वर्धमान महान दिन विचरे हमारे गाथा नंबर 42 41वीं गाथा में यह कहा था कि वो केवल ज्ञान जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो सप्रदेशी अप्रदेशी मूर्त अमूर्त और अजाद पर्यायम पलय गदम पर्यायम जो पर्याय अभी पैदा नहीं हुई हैं अथवा जो पर्याय पैदा होकर नष्ट हो गई हैं उन सबको एक समय में जानता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान। ये सब केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान की ही चर्चा चल रही है। अब आगे जो गबन्ने आदि 10 गाथाओं का पाठ किया उनमें भी इसी बात को वो स्पष्ट कर रहे हैं कि वो केवल ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे होती है, उसका जानना कैसे होता है, अपना जानना कैसे होता है और उनका जानना कैसे होता है, अपने जानने की जो प्रक्रिया है हम उसी प्रक्रिया से केवल ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे तो वो केवल ज्ञान हमारी समझ में नहीं आएगा, उसका स्वरूप है। जैसे भी आपको ज्ञान पढ़ पढ़ के होता है ना, तो केवली शुद्ध केवली कोई पढ़ पढ़ के नहीं बनता है। पर हमको भी क्रम से 4 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स, 10 साल का कोर्स, फिर इसके बाद ये डिग्री, इसके बाद ये डिग्री, आगे पढ़ते जाते पीछे बहुत कुछ भूलते जाते, ऐसा केवल ज्ञान में नहीं होता। तो अंतर मुहूर्त में अपने आत्मा के सन्मुख हुए और उस एक झटके में केवल ज्ञान हो जाता है और फिर वो अनंत काल तक अनंत पदार्थों को प्रति समय द्रव्य गुण पर्याय सहित जानता रहता है। देखो या अब इस गाथा में कह रहे हैं अथ गेयार्थ प्रणमन लक्षण क्रिया ज्ञानान न भवती सिद्धदाति। अब यह विश्वास दिलाते हैं, यह सिद्धांत कराते हैं कि गेयार्थ प्रणमन नामक गेयार्थ प्रणमन है लक्षण जिसका ऐसी क्रिया से वास्तव में ज्ञान ही नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये मैंने वो ये कह रहा है कि एक एक गे को मैं जानूं, गे के लक्ष्य से होने वाली क्रिया वो गेयार्थ प्रणमन लक्षणा, गेयार्थ गेयों को जानने का लक्ष्य से होने वाली क्रिया। गेयार्थ प्रणमन क्रिया के बारे में इसमें बहुत अच्छा अच्छा बहुत विस्तार से लिखा है, अभी अपन पढ़ेंगे, है ना। गाथा तो ऐसी है ना, गेयार्थ मय जो प्रणम है ना उसे छायक ज्ञान हो, कहे जिनवर देव की वह कर्म का ही अनुभवी। वो आत्मा का अनुभवी नहीं है, बस उसको तो यही विकल्प बना रहा है ना, ये जानू ये जानू ये जानू ये जानू, पदार्थ तो अनंत है और उनका अंत तो है ही नहीं, तो ये करूं ये करूं ये करूं, ऐसे ही कर्म का वो अनुभव करने वाला है। देखो कौन सा पेज है इसमें निकालना, पेज नंबर के सबसे नीचे की पंक्ति पढ़ो। यहाँ गेयार्थ प्रणमन क्रिया से क्या आशय है, यह बात गहराई से जानने योग्य है। माना इस गाथा में एक ही बात समझनी है, गेयार्थ प्रणमन क्रिया किसे कहते हैं, तो ये सब बात समझ में आ जाएगी। बाकी तो पूरक शब्द हैं कि जो गेयार्थ प्रणमन क्रिया में उलझा है उसे केवल ज्ञान नहीं होगा, अथवा उसे ज्ञान ही नहीं है, वो तो कर्म का ही अनुभव करने वाला है, वो ज्ञान का अनुभव करने वाला नहीं है। तो बाकी की क्या चीज है? प्रचलित गेहार्थ प्रणमन रूप क्रिया को समझना है कि वो क्या चीज है, और वो जरा काफी कठिन है। देखो अपने आगे जो मैंने और सब आचार्यों के दिए हैं, आचार्य जयसेन में कृत तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा की उत्तान का लिखते हुए कहा गया है कि जिसके कर्म बंध के कारणभूत हितकारी अहितकारी विकल्प रूप से जानने योग्य विषयों का प्रणमन है, उसके छायक ज्ञान नहीं है। अब ये इनने भाषा दी ना ऊपर से कि जिसके कर्म बंध के कारणभूत हितकारी अहितकारी विकल्प रूप जानने योग्य, ये गेहार्थ प्रणमन रूप क्रिया का अर्थ करने की कोशिश उन्होंने की है, जो उससे भी ज्यादा कठिन हो गई है। टीका में लिखा है कि यह नीला है, यह पीला है इत्यादि विकल्प रूप से गेय पदार्थों के प्रति प्रणमन करता है तो उस आत्मा को छायक ज्ञान नहीं है अथवा ज्ञान ही नहीं है। ये असली चीज है। अब ये लिखा ना, यह नीला है यह पीला है, फिर कहने का मतलब ऐसे विकल्प पूर्वक जानता है, एक एक चीज को ऐसे जाने, ये नीला है ये पीला है ये ऐसा है ये ऐसा है ऐसा है, तो केवल ज्ञान हो जाएगा एकदम। तो कहते ऐसे जो विकल्प रूप परिणमित होता है एक एक पदार्थ के जानने रूप, तो वो उसे कभी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लगा, जब सब जगह छाना पर अपने यहां जो 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 जितने विद्वान हैं उनमें से ज्यादा कोई स्पष्ट बात समझ में नहीं आई तो सप्तदशांगी टीका देखी। सप्तदशांगी टीका का नाम सुना? मनोहर लाल जी वर्णी थे ना, छोटे वर्णी जी कहते थे जिन्हें, सहजानंद वर्णी भी कहते हैं, और जिन्होंने वो लिखा ना ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, उस वक्त वो बहुत लोकप्रिय हुआ था। गांधी जी एक भजन बुलाया करते थे, इसी तर्ज पे था वो, रघुपति राघव सीताराम ये सब बोलते थे ना, तो वो गीत बहुत चलता था राजनीति में, जो भारत आजाद नहीं हूं वैसा तब। तो उसी गीत की लय पे मनोहर लाल वर्णी ने ज्ञाता दृष्टा आत्म राम ऐसा एक गीत बनाया था। हाँ, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, बढ़िया गीत था पूरा, बहुत चलता था। वो वर्णी जी है, उनका नाम सहजानंद वर्णी की सप्तदशांगी टीका में लिखते हैं, जो गेहार्थ प्रणमन रूप क्रिया तीन रूपों में परखी जाती है ना? दर्शन मोह से संबंधित, दर्शन मोह रहित चारित्र मोह से संबंधित, और दीतराग क्षयोष्म ज्ञान से संबंधित। अरे तीन, ये गेहार्थ रूप प्रणमन क्रिया माने मिथ्या दृष्टि से लेकर बारहवें गुणस्थान तक होती है, ये बता रहे। क्योंकि दर्शन मोह से संबंधित इधर मिथ्या दृष्टि की हो गई, फिर दर्शन मोह से रहित और चारित्र मोह से संबंधित है ना, तो चारित्र मोह के फिर भेद हैं अनंतानंदी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, उनसे सब संबंधित। फिर दीत राग छायोग समय ज्ञान, ये बारहवें ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान का पूर्ण वीतराग हो गया है और क्षयोग समय ज्ञान है, अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं है, और उनसे संबंधित। तो मतलब हो गया ये मिथ्यात्व से लेकर और बारहवें गुणस्थान तक है ना। अब इन तीनों की परिभाषा दी है, आत्म रूप से अंगीकृत गेयाकार के अनुरूप इष्टा निष्ठादि विकल्प भाव परिणति दर्शन मोह संबंधित गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया है। अब ये कहते गेयों में ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इसका मैं करता हूं, इसका मैं करता नहीं हूं, इसका मैं स्वामी हूं, इसका मैं स्वामी नहीं हूं, ऐसे विकल्प रूप जो वृत्ति है उसका नाम किया गेयार्थ प्रणमन क्रिया। अब वो कहते हैं कि सम्मा दर्शन तो हो गया, फिर भी ऐसे पर के लक्ष्य से विकल्प चलते रहते हैं, है ना। उसमें से उन्होंने वो दूसरी निकाली और वो कहते बारहवें ग्यारहवें गुणस्थान में पहुंच गया, वितराग हो गया, लेकिन अभी छायिक ज्ञान नहीं हुआ, तो वहां भी जो सूक्ष्म ज्ञान में पदार्थों का जानना होगा, वो विकल्पात्मक होगा, वो सब इतना जब तक होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। माने छायिक ज्ञान का स्वरूप गेयार्थ प्रणमन क्रिया नहीं है। गेयार्थ प्रणमन क्रिया माने गेयों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। वो जो केवल ज्ञान होगा ना, वो किसी पर गेय के लक्ष्य से नहीं होगा, अपने आत्मा को जानेगा और सारा लोकालोक उसके जानने में आएगा। मतलब वो जिसको जानना जाना है वो उसके लक्ष्य से नहीं हुआ। और अपन इसको ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यदि पर को भी जानना है तो अपने को जानो, स्थूल दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि पर को जानने का उपाय भी अपने आत्मा को ही जानना है। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा कि बार बार लिखा तेरी कर्म का उदय आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो तुझे कर्म में कुछ नहीं करना है, तू तो अपने आत्मा को जान और कुछ नहीं करना है, बार बार ये कहते हैं। जब वो बार बार कहता है तो कर्म का तीव्र उदय होगा, अनुभव तीव्र होगा, तो फिर मेरा कैसे काम होगा, फिर तो काम नहीं हो पाएगा। तो पंडित जी लौट के कहते हैं अच्छा ये बता फिर तू कर्म के अनुभव को ठीक करने के लिए क्या करना चाहता है। फिर तो बस और क्या करना चाहता, क्या करना, तीर्थ यात्रा दान क्या करना चाहता है। वो कहते हैं कि वो अनुभाग को भी ढीला करने के लिए तुझे तत्वाभ्यास ही करना पड़ेगा, तो ये तू करेगा तो वो कर्म भी तेरा ढीला होगा। ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा को जानना के लिए तो आत्मा को जानना ही पड़ेगा, लेकिन सारे लोकालोक को जानने के लिए भी उनके लक्ष्य से नहीं जानना पड़ेगा। माने गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया से सारा लोकालोक जानने में नहीं आता, आत्मा तो आता ही नहीं है, और आत्मा के जानने से आत्मा भी जानने में आता है और सारा लोकालोक भी जानने में आता है। फिर कहते हम तो यही कहते हैं कि पर को आत्मा जानता ही नहीं है तुम, और आप ही कहते हो बार बार सिद्ध करते हो कि जानता है जानता है जानता है, और अब आप ये कह रहे कि पर के जानने के लक्ष्य से सब न पर को जानना होगा ना स्व को जानना होगा, तो ये तो हम कह रहे ना, पर को जानता नहीं है ये नहीं कह रहे हम, पर के जानने का लक्ष्य ज्ञानी को नहीं होता, वो तो स्व के जानने में स्वाभी जानने में आता है और पर भी जानने में आता है, सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलक जाता है, केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान जब वे उन्हें हुआ था तो एक समय पहले जब वे क्षयोपशम की अवस्था में थे ना, जो इसमें तीसरा लिखा वीतराग क्षयोपशम ज्ञान से संबंधित, तो तब वे क्या थे, अपने आत्मा में ही उपयोग स्तर किया था ना तब, और फिर जो एक समय बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो उसने अकेला आत्मा दिखा होगा कि सारा लोकालोक दिख गया, वो तो एक को ही जानोगे तो उसमें अपना आत्मा भी दिखेगा और लोकालोक भी दिखेगा। तो गेयार्थ रूप प्रणमन, गेयों के लक्ष्य जो प्रणमन होता है उससे सारी दुनिया नहीं दिखाई देती, माने केवल ज्ञान पैदा नहीं होता। आप आत्म रूप से अंगीकृत गेयाकार के अनुरूप आत्म इष्टानिष्ट आदि विकल्प भाव परिणत दर्शन वो से संबंधित गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया। पहली क्रिया कौन सी है? आत्मा रूप से अंगीकृत गेयाकार, गेयों के जो आकार दिखाई दिए उन गेयों को आत्म रूप से अंगित कर ये मैं हूं। आप अपना परिचय दीजिए तो हम खड़े होते हैं कि मैं केमिस्ट्री का विशेषज्ञ हूं, उसमें मैंने पीएचडी किया है, उसमें मैंने रिसर्च की है, आज तक इतने पीएचडी निकाले हैं। तो अपन ने वो केमिस्ट्री को जानने रूप अपना ज्ञान उस रूप परिणमित हुआ, वही मैं हूं। मैं के रूप में परिचय हमने वही दिया ना, समझना ना है? मैं जैन दर्शन का विशेषज्ञ हूं, मैंने जैन दर्शन में पीएचडी किया है, मैंने सारे शास्त्रों का स्वाध्याय किया है। तो ये मैंने गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया से अपना परिचय दिया ना, ये केवल ज्ञान का रास्ता नहीं है।
देखो ये पहला हुआ आत्म रूप से अंगीकृत, मन स्वयं आत्मा के रूप में स्वीकार न होने पर भी गेयाकार के अनुरूप हर्ष विषादादि विकल्प भाव परिणत दर्शन मोह रहित चारित्र मोह संबंधित गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया है। दूसरी है इसमें दर्शन मोह से रहित लिखा, ऊपर में दर्शन मोह से सहित था,
है ना, मिथ्यात्व से सहित और ये दूसरी मिथ्यात्व से रहित
और तीसरी वीतराग छद्मस्त क्लियर लिखा है।
वीतराग माने ग्यारहवां बारहवां गुण स्थान और छद्मस्त माने भाई ग्यारहवां बारहवां, क्यों
कि केवल ज्ञान नहीं हुआ। श्रवणों के छयोक्ष्म ज्ञान में ज्ञानावरणादि देश घाती स्पर्धक विपाक बस देश घाती स्पर्धकों के विपाक के बस होकर होने वाली जो अस्थिरता है वो वीतराग छायोष में ज्ञान संबंधित गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया है।
वो तीसरी
वो अब स्वामी जी ने ये बहुत साधारण विषय नहीं है, बहुत जटिल विषय है जो स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए मैं पूरा पढ़ रहा हूं। लेकिन स्वामी जी जैसे व्यक्ति ने जिनका अध्ययन कोई विशेष नहीं था वो कितना गहराई का भाव पकड़ लिया, ये भी एक बहुत महिमा से जानने की चीज है। सर्वज्ञ देव की सिद्धि करने के लिए न्याय देते हैं कि गेय का अवलंबन लेकर जो ज्ञान राग में अटके वह व्यवहारिक ज्ञान है किंतु वास्तविक ज्ञान नहीं, कुमति ज्ञान है। आत्मा जाननहार है, अब ये तो कहीं लिखा नहीं है, ये उन्होंने अपने दिमाग से निकाला है। आत्मा जाननहार है, जाननहार भगवान जानने योग्य पदार्थ के आश्रय से, जाननहार जो भगवान है वो जानने योग्य पदार्थ माने गे पदार्थों के आश्रय से माने गेयार्थ प्रणमन हुआ ना, से प्रणमित होता हो, जो जानने योग्य पदार्थ के आश्रय से प्रणमित होता हो तो गेयार्थ प्रणमन क्रिया हो गया ना। गेयार्थ प्रणमन क्रिया का अर्थ ये हो गया ना, हो अथवा राग में अटक करके काम करता हो तो उसे सकल कर्म बन के छह से प्रवर्तित होने वाले ज्ञायक का ज्ञान नहीं है। इसके लिए तुम ऐसा किया करे तो जल्दी समझ में आएगा कि ये जो विशेषण है इनको अलग करके जो करता है कर्म है क्रिया है उनको पहले छांट के अलग करो, क्योंकि विशेषण से वो वाक्य उलझ जाता है। जैसे जैसे मैं बताऊं तुम्हें कि सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा, तो इतनी बात कहना है, अब वो कवि है ना तो वो सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा तो 10-5 विशेषण तो सीता जी को लगाएगा, अत्यंत विनम्र पति की सेवा में परायण वहां शीलवती, ऐसे लंबे 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 ऐसी सीता जी, फिर उनने रामचंद्र जी से कैसे रामचंद्र जी, फिर 10 विशेषण थे रामचंद्र जी के लगाएंगे, जंगल में जाने के इच्छुक, पिता की आज्ञा के पालन करने वाले, और ऐसे कुछ भी लगाएंगे, 10 वचन होने लगाएंगे और फिर कहेंगे कि उनने कहा, तो 10 वचन कहा के लगाएंगे कि उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से नीची गर्दन करके कैसे कैसे कहा, तो आप उसमें उलझ के रह जाते हैं। अब आप इतना निकाल लो, सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा, तो काम की इतनी सी बात है। ऐसे ही जो अमृतन आचार्य वगैरह है ना भाई, तो ये फिर पहले आत्मा के विशेषण लगाएंगे, फिर उस गे के विशेषण लगाएंगे, फिर उसको जानने के वो सन्मुख, ऐसा वो आत्मा उससे जो ज्ञान होगा उसको गेयार्थ प्रणमन क्रिया कहेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है समझना, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। पंडित दौलत राम जी कासलीवाल का नाम सुना होगा, पंडित टोडरमल जी के जमाने में थे और उन्हीं के साथी थे, और वे राजनीतिक थे, माने जयपुर के महाराजा के राजदूत थे, जो उदयपुर में रहा करते थे, जयपुर की महाराजा की तरफ से। उनने पुराणों की वचनिका लिखी, तो उनने भी यही जो मैं बता रहा हूं ऐसी शैली अपनाई।
कैसे?
फिर वे जो उन्होंने पूरा एक पेज पढ़ा संस्कृत के श्लोकों का, रविशरणाचार्य का, और फिर उसमें से उन्हें निकाल दिया ये कि ऐसे रामचंद्र जी ने सीता जी से ये कहा, फिर वो क्या लिखेंगे, रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, कैसे हैं रामचंद्र जी, फिर वो रामचंद्र जी की फिर बात करेंगे, फिर कहें और कैसे हैं रामचंद्र जी, फिर और कैसे हैं रामचंद्र जी, और मतलब पहले वो वाक्य कह देंगे कि सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा, फिर वो रामचंद्र जी के विशेषणों को बाद में स्पष्ट करेंगे, और वे सब नहीं करेंगे, उनमें भी जितने उनको बताना आवश्यक लगेंगे वे उतने करेंगे, मानो 10 विशेषण हैं तो 2-3 करेंगे वो, क्योंकि ज्यादा कैसे हैं रामचंद्र जी, कैसे हैं रामचंद्र जी कह देंगे तो लोग पढ़ नहीं सकते, समझे ना, तो भी उससे बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि पहले हमें वाक्य गठन, ये अर्थ प्रणमन क्रिया क्या, ये माने वे पदार्थ जो हमारे ज्ञान में जानने में आते हैं, और उनके लक्ष्य से जानने का प्रयत्न, उसका नाम है गेयार्थ प्रणमन क्रिया। अब वो कहते हैं कोई गेयार्थ प्रणमन क्रिया से कभी केवल ज्ञान नहीं, सीधी शुद्ध हिंदी में यदि कहें तो कहें पढ़ पढ़ करके कोई आज तक केवल ज्ञान नहीं
होता, तो ये
कि केवल ज्ञान को प्राप्त करना ऐसे गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया के विकल्पों में उलझना नहीं है, क्या ये कहना चाहते हैं। देखो फिर कान्जी स्वामी का पूरा आप लोग पढ़ लेंगे ना, आत्मा जाननहार है, जाननहार भगवान जानने योग्य पदार्थ के आश्रय से प्रणमित होता हो अथवा राग में अटक करके काम करता हो तो उसे सकल कर्म बन के 6 से प्रवर्तित होने वाले ज्ञायक का ज्ञान नहीं है, जो तो मैंने बताई तरकीब से उसे अंदाज से समझ में आ गया होगा ना, गेय पदार्थ रूप से प्रणमित होता हो, गेय पदार्थ रूप से प्रणमित होता हो अर्थात ज्ञाता स्वभाव रूप प्रणमित नहीं होता हो, किंतु ज्ञाता को चूक करके परके को जानने जाए तो वह ज्ञान राग में अटकता है, वह ज्ञान ज्ञाता रूप नहीं प्रणमित होता किंतु गेय रूप प्रणमित होता है, ऐसा कहा जाता है। तो गेय रूप प्रणमित होता है मन गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया, इसका अर्थ गुरुदेव ने इस भाषा में, इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि बुजुर्ग लोग जो पगड़ी छाप बैठे रहते हैं उनके सामने उनकी समझ में क्या आता होगा हम लोगों को भी बहुत मेहनत होती है, ऐसा नहीं, बहुत करते हैं तब मुश्किल से बहुत उसकी पाते हैं, कई गाथाओं में तो ऐसा होता है। ज्ञाता स्वभाव को भूल कर, देखो ज्ञेय का अवलंबन लेकर राग का कार्य करता है उसे ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि वह गेयार्थ प्रणमन है। अब आया, क्लियर हुआ ना कुछ, ये गुरुदेव की भाषा में है, माने वस्तु भी समझो और गुरुदेव की महिमा भी समझो। देखो ज्ञाता स्वभाव को भूलकर ज्ञेय का अवलंबन लेकर राग का कार्य करता है उसे ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि वह ज्ञेयार्थ प्रणमन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह पर पदार्थ रूप प्रणमित होता है, अपितु राग रूप प्रणमित होता है। क्या मतलब कि वो ज्ञेयार्थ प्रणमन क्या ये के मैंने रूमाल को जाना तो मैं रूमाल नहीं हो गया, तो फिर ज्ञेयार्थ प्रणमन क्या हुआ कि मैं ये रूमाल को जानने रूप ज्ञान से प्रणमित हो गया। क्या रूमाल रूप प्रणमित नहीं हो गया, रूमाल को जानने रूप ज्ञान से प्रणमित हो गया। जो लिखा ना, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह पर पदार्थ रूप प्रणमित होता है, अपितु राग रूप मन ऐसे जानने के विकल्प रूप प्रणमित होता है। ऐसा यहाँ समझना और परिग्रहों को जानने के लिए जाता हुआ ज्ञान राग में अटकता है, राग माने विकल्प, विकल्प में अटकता है, इसलिए उसे ज्ञान नहीं कहते, अर्थात उसे छाया ज्ञान नहीं कहते। अब एक झटके में खत्म कर दिया, उसे ज्ञान नहीं कहते, ज्ञान तो कहते हैं भैया, वो तो हमने ये जाना रूमान तो जानने, वो ज्ञान तो कहते ही है, कहते छाया ज्ञान नहीं कहते, हम इसी को कहते हैं ज्ञान नहीं कहते, उसे छाया ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान राग में अटके तो वह छाया ज्ञान नहीं है। राग और गेय में अटक कर, दो जगह दिया राग और गेय, राग भी तो गेय है ना, राग और गेय में अटक कर राग का कार्य करे वह सच्चा ज्ञान नहीं है, अपितु राग और गेय का भेद करके ज्ञान का कार्य करे वही सच्चा ज्ञान है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, वह दूसरे गेयों को जानकर इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें प्रीति अप्रीति करता है, वह बंध का कारण है। ये जो विकल्प रूप प्रणमित होता है ना, वो बंध का कारण है। सर्वज्ञ को ऐसा नहीं होता, जो गेयों को इष्ट अनिष्ट कल्पित करके राग द्वेष रूप होता हो उसे केवल ज्ञान नहीं हो सकता। केवल ज्ञान कहीं भी अटके बिना भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है। जो ज्ञान एक के बाद एक को जानता हुआ राग में अटके वह छाया ज्ञान नहीं कहलाता। आत्मा ज्ञान स्वभाव रूप नहीं प्रणमता। क्या आत्मा ज्ञान स्वभाव रूप नहीं प्रणमता और एक एक गेय में अटक कर काम करता है, करे आत्मा, आत्मा को तो जाने नहीं, वो एक एक गेय में अटके, वो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना में अटकता है, तो उसे कल्पना में ज्ञान नहीं है, सुख भी नहीं है। वह गेय से मुझे ज्ञान होगा, मुझे आनंद होगा, इस तरह गेय के इष्टपने में अटकता हुआ अज्ञानी राग द्वेष का अनुभव करता है। जो आत्मा पर में सावधान पने अनुभवता है वह कर्म के बोझ को अनुभवता है, मनुष्य कर्म बंद होता है। अब ये मैंने निष्कर्ष निकाला है ये सबका, पढ़ो अभी। उक्त संपूर्ण विश्लेषण से एक ही बात स्पष्ट होती है कि गेयों को जानते समय जो उनमें ही अटक जाते हैं, उनमें एकत्व ममत्व स्थापित करते हैं, अटक जाते हैं का अर्थ है एकत्व ममत्व स्थापित करते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करते हैं, उनके लक्ष्य से अथवा उन्हें आधार बनाकर राग द्वेष रूप प्रणमित होते हैं, वे सभी गेयार्थ प्रणमन स्वभाव वाले हैं। ये गेयार्थ प्रणमन का अर्थ ये है, गेयार्थ प्रणमन की क्रिया करने वाले हैं और उन्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। यानी श्रद्धा में यदि पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है तो केवल ज्ञान होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन वो मिट गया है और फिर भी विकल्प रूप से ही प्रणमित होते हैं। अब पर को ही जानते हैं और जैसा छयोपशम ज्ञान जानता है ना वैसे ही जानते हैं, तो वे
केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल ज्ञान की ये विधि नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं।
आज आप सूक्ष्म ज्ञान का समझा रहे थे ना अन्ना जी, आपको क्या क्या बता रहे थे, बता सकता है कोई
कौन बताएगा? खड़ा हो, खड़े हो, खड़े हो के बोलो।
उसको क्षयोपशम कहते हैं। अब वे क्षयोपशम भाव 18 प्रकार के होते हैं। अब 18 प्रकार के वे क्षयोपशम भाव है ना, तो अभी आपको कितना कठिन काम है अभी समझने में। तुमने एक तो परिभाषा समझ ली, लेकिन अभी हरेक का ये जानना, जैसे तुमने कहा कि हमने क्षयोपशम ज्ञान मति ज्ञान को जानना, तो इसके सर्वघाती स्पर्धक कौन है, देशघाती स्पर्धक कौन है, वो पहले हमें जानना आना चाहिए। फिर उनके वर्तमान कालीन स्पर्धकों में का तो उदयाभावी है, माने अभी उदय नहीं आ रहा, बस सत्ता में तो विद्यमान है। क्षय तो उसे कहते हैं जब सत्ता में से भी नाश हो जाए। क्षय का वास्तविक स्वरूप क्या है कि वो सत्ता में भी नहीं रहे अंदर, लेकिन वे सत्ता में तो मौजूद है पूरे के पूरे। अभी उदय का अभाव हुआ है सिर्फ, अब उसका नाम जैसा दिखता है कि क्षय हो गया, क्षय हो गया, क्षय हो गया। हमको लगता है ना क्षय और उपशम दोनों मिलके क्षयोपशम, तो इसमें क्षय भी है और उपशम भी है, तो ये कम से कम उपशम से तो बड़ा हो गई, क्योंकि उपशम में तो प्योर उपशम ही उपशम है और इसमें क्षय भी है, लेकिन क्षय नहीं है, ये क्षय भी नकली है। सिर्फ वर्तमान कालीन जो स्पर्धक है समझे उदय में आने योग्य, उनका अभी उदयाभावी क्षय है। उदयाभावी क्षय माने उदय में उदय के अभाव रूप क्षय। अब वो और बारीक बातें हैं वो बताएंगे कभी अन्ना जी आपको, कि वे तो खड़े तो नहीं रह सकते ना, यदि उनका उदय काल आ गया तो खड़े तो नहीं रह सकेंगे, तो वे आगे जो है ना अप्रत्याख्यानावरण कर्म के रूप में परिणमित होकर और वहां उदय में आगे खिर जाएंगे, तो वो नष्ट तो हो रहे, ऐसा नहीं कि वो खड़े होके रह गए अब तुम्हारे आत्मा के साथ चेंटे रहे, उनका काल आएगा तो उदय का अभाव मन यहां उदय नहीं अपना कार्य नहीं दिखा रहे, लेकिन वो किसी न किसी रूप से खिरेंगे, वो अलग मुद्दा है। अब यहां तो ये कह रहे हैं और आगामी जो आने वाले थे तो वे वही खड़े रहे, अभी पर ये इधर रुक गए, वे वहां रुक गए, इतना सा आपको समय मिला है। पर देशघाती का तो उदय है ही, तो इस तरह से जो अवस्था बनती है तो 18 प्रकार के क्षेत्र संभाव है, तत्वासूत्र में पढ़े ना। अब एक एक के आपको सर्वघाती देशघाती ये सब समझने पड़ेंगे, तब वो समझ में आएगी। अब उसी से अज्ञात प्रणमन रूप क्रिया, अब बुए कहते हैं ज्ञेयों के लक्ष्य से ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का परिणमन माने ज्ञान का उधर उलझना, उसमें वो राग भी होगा, बस उसका नाम है ज्ञेयास परिणमन क्रिया है। इससे तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और अत्यंत सरल शब्दों में कहें तो इसका सिर्फ इतना अर्थ है कि पढ़ पढ़ के आज तक न किसी को केवल ज्ञान हुआ है और न पढ़ पढ़ के किसी को केवल ज्ञान होगा, वो तो ध्यान में प्राप्त होने वाली चीज है। देखो यह ज्ञेयार्थ प्रणमन क्रिया अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को परज्ञेयों में एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक होती है, पहला पॉइंट हो गया ना। और सविकल्प ज्ञानियों को मिथ्या तो चला गया, मिथ्या चला गया माने पर मैं एकत्व करते तो भोगते तो चला गया, लेकिन विकल्प मौजूद है अभी। सविकल्प ज्ञानियों को चारित्र मोह जन्म राग देश रूप हर्ष और विषाद रूप विकल्पात्मक होती है, और बीत राग छदमस्तों में अस्थिरता रूप होती है। तीन होगी वो कौन ये अर्थ प्रणमन रूप क्रिया मिथ्या दृष्टियों में कैसे होगी पर मैं एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप
और बाकी उसके ऊपर दूसरे नंबर वाले जो है ना
उनमें कैसे होगी विकल्प रूप श्रद्धा तो ठीक हो गई लेकिन विकल्प खड़े होते हैं
देखो मैं इसको रूमाल को कुछ नहीं कर सकता ऐसी श्रद्धा है फिर भी इसको धो के साफ करने का फाड़ कर तीन चीज बनाने का कैसे विकल्प आते हैं कितनी विकल्प
सारी दुनिया कहती छलिया है
कहता है कि मैं कर नहीं सकता हूँ मनोजी ना करते देखते
विकल्प करते देखते ना हम सभी ऊपर से नीचे तक सभी है ना यहाँ पे ये बात करते हैं कि एक दिन दूसरे दिन में कुछ भी नहीं कर सकता है नहीं करता ना साइकिल अपने आप चलती है हम नहीं चलाते हैं साइकिल को प्रत्येक दिन में से उसमें खुद गमन गमन की शक्ति है उससे जाती है और फिर चल रही साइकिल लाओ उठे ठीक कराना है चलना है आगे जाना है बैठना है गाड़ी को चलाना है ऐसे विकल्प आते हैं पर ये ऐसे विकल्प लाखों वर्षों तक आते रहते मैंने ऐसी दशा इस जीव की कोई ऐसा नहीं कोई घंटा दो घंटा बनी रहती हो क्या प्रमाण है लाखों वर्षों तक आते रहते हैं ये जो ऋषभदेव भगवान थे जन्म से ही छायक सम्यक दृष्टि थे ना और 83 लाख पूर्व तक ये गृहस्थी में रहे और असी मसी किसी विद्या वाणिज्य ये सब सिखाते रहे और ये सब करते रहे ठीक है मैंने कर्तृत्व बुद्धि रंच मात्र नहीं और कर्तृत्व के विकल्प कितने तो कितने बरस होंगे जे लाखों बरस तो होंगे ना 83 लाख पूर्व में अरे वो फिर उसके पहले 33 सागर वहां रहे 33 सागर रहे ना ऊपर तो वहां भी तो यही रहे श्रद्धा ऐसी रही हो विकल्प वैसे आते ये दोनों में अंतर आ रहा है ना ज्ञात प्रणवन रूप क्रिया मिथ्या दृष्टियों को परज्ञेयों में एकत्व मत और कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक होती है और सब विकल्प ज्ञानियों में समझेंगे ना विकल्प है और ज्ञानी है ज्ञानी माने वो मिथ्या तो नहीं है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व एक उनको नहीं है वो चारित्र मोह जन राग देश चारित्र मोह जन माने राग देश माने अनंतानबंदी राग देश नहीं अब प्रत्याख्यानावरण और संजुनन जिसके जैसे हो छठवें सातवें मनुष्यान में तो अकेले संजुनन रूप है यदि पांचवें मनुष्यान में है तो संजुलन और अप्रत्याख्यान रूप है ऐसे लगा लेना है साहब और तात्पर्य यह है कि क्षयोपशम ज्ञान में जाने गए गे पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व और उनके लक्ष्य से राग देश रूप प्रणमन ही गेयार्थ प्रणमन है ऐसा गेयार्थ प्रणमन ना तो केवल ज्ञानियों को होता है और ना इस प्रकार प्रणमन वालों को केवल ज्ञान होता है क्योंकि वे लोग तो कर्म का ही अनुभव करने वाले हैं ये जो तात्पर्य है कि मैं फिर 5 लहन में मैंने यह समेटा आपको इतना ही याद हो जाएगा तो काम चलेगा लेकिन इसके लिए ये पूरा अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए नहीं तो वो रटे वाला काम हो जाएगा क्या निष्कर्ष ये है सूक्ष्म ज्ञान में जाने गए गे पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व और उनके लक्ष्य से राग देश रूप प्रणमन ही गेयार्थ प्रणमन है अब इसमें ये जो है लक्ष्य से और राग देश रूप प्रणमन राग देश रूप ये दूसरे तीसरे को लिया है समझे ना दूसरे को लिया है और पहला तो वो अकेला श्रद्धा संबंधी है ऐसा गेयार्थ प्रणमन ना तो केवल ज्ञानियों को होता है और ना इस प्रकार के प्रणमन वालों को केवल ज्ञान होता है केवल ज्ञानियों के ऐसे विकल्प पूर्वक जानना नहीं होता और केवल यही विकल्प पूर्वक जानते रहेंगे तो उसे केवल ज्ञान तो फिर हम आपको अपना उपयोग को अंदर में ले जाना है ना शांति जी तो फिर
ये तो करना चाहिए ना, ये तो विकल्प हो गई ना कि मैं अंदर जाऊं। तो कह रहे ऐसे विकल्प वालों को केवल ज्ञान नहीं होता,
ऐसे विकल्प वालों को आत्म ध्यान भी नहीं होता। आत्मा में उपयोग को स्थिर करना है ना,
तो ये तो अस्थिरता है। अस्थिरता और क्या है? ये जो विकल्प हो रहे हैं यही तो अस्थिरता है।
अभी पर में कुछ करने रूप विकल्प हो रहे थे और अब अपने में करने रूप विकल्प होने लगे। अब पर को जानने रूप विकल्प हो रहे थे, अब अपने को जानने रूप विकल्प होने लग गए। लेकिन विकल्प की मर्यादा से काल उल्लंघन तो नहीं किया ना क्या? तो वो इसलिए सब गेयार्थ रूप प्रणमन है, गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया। अब इसको मुझे बहुत पता है, जब भी मैंने लिखा था इसको लिखे भी मेरे ख्याल से 93-94 में लिखा होगा, 91 में शुरू किया था मैंने लिखना। कौन ये समय सार अनुशीलन, प्रयोजन सार अनुशीलन बाद में उसके बाद किया होगा। समय सार हो गया ना 100 में पूरा, 2001-02 में लिखा होगा। उसके पहले भी सब गे आर्थ प्रणमन रूप क्रिया का अर्थ लोग समझते ही नहीं थे, बहुत चर्चा करते थे, बस ऐसे बोलते थे गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया नहीं होनी चाहिए, गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया नहीं होना चाहिए। वो गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया क्या है वो स्पष्ट नहीं होता था, लेकिन जब ये लिखने का समय आया तो फिर तो पूरा माथा मारना पड़ता है ना, कहीं से भी निकालो इसको स्पष्ट अर्थ करो। तो गेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया देखो, बर्नी जी भी बहुत अच्छे विद्वानों में से थे, उनने भी वो निकाली, मैंने आपको पढ़ के सुनाई ना, यद्यपि बहुत कम उल्लेख उनका किया है मैंने, लेकिन पढ़ा सब है उनका बहुत गहराई से। एक समय सार में है जो शुरू शुरू में ही है, शांति जी पहले आपको बताया था क्या शब्द है वो है? हाँ, प्रत्येक आत्मना, प्रत्येक आत्मना का अर्थ ही कहीं ध्यान से ख्याल क्लियर नहीं होता था। और फिर जब मैंने उसको देखा तो बर्नी जी के में मिला, तो वो मैंने उसमें लिखा उनका, फिर उनका उल्लेख किया, क्योंकि अपने यहां तो किसी के यहां किसी ने लिखा ही नहीं था। अब ऐसे ही है कि गेयास प्रणमन रूप क्रिया क्या है, मुझे बहुत मालूम है। फिर पादरी जी भी अंत समय में कुछ अपनी भी किताबें लिख रहे थे ना, तो इसमें बहुत अटके थे, मेरे से पूछते थे बार बार, ख्याल में आए ना। फिर मैंने कहा गेयास प्रणमन रूप क्रिया तो ये है, इसमें क्रिया मिया कोई नहीं है, बस वो क्रिया शब्द लिखा ना, गेयास प्रणमन रूप क्रिया, तो वे उसको कोई क्रिया समझते थे, कल क्रिया समझ गए ना। तो क्रिया नहीं है ये, पर को विकल्प पूर्वक जानने का नाम ही गेयास प्रणमन रूप क्रिया है। जो मिथ्यात्व के सहित हो तो उसमें कर्तृत्व एकत्व आ जाएगा, और मिथ्यात्व सहित नहीं हो तो सिर्फ विकल्पात्मक रहेगा। ये जो आता है ना दसवें कलश में, विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विदेती, तो उसमें संकल्प विकल्प माने क्या? अपने बहुत माताएं बहने कहती मेरे तो संकल्प विकल्प बहुत हो गया, जानते हैं संकल्प विकल्प क्या है? परिणामों में आकुलता हो जाना, घबराहट हो जाना, क्या है राम क्या करूं क्या ना करूं, वो संकल्प विकल्प। वो कहते हैं कि पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि, कर्तृत्व भुक्ति, भौतृत्व भुक्ति, इसका नाम है संकल्प। और क्रियों के लक्ष्य से ज्ञान में तरंग जो खड़ी होती है उसका नाम है विकल्प। पर पदार्थ जान देना तो ये ऐसा, इसमें लिखा था ना, अपन ने पढ़ा था कि ये ऐसा, ये काला है, ये पीला है, हैं? ये विकल्प है, संकल्प विकल्प। तो मेरे को संकल्प भी नहीं हो, पर में एकत्व एकत्व वृद्धि नहीं हो, और ये पर को जानने रूप विकल्प नहीं हो, समझ ना। तो इन विकल्पों का निषेध किया, उसमें से जो लोग नहीं समझ पाए पूरा गहराई से, उनने जानने का निषेध समझ लिया।
निषेध काय का किया था?
पर के जानने के विकल्प का। बहुत समय पहले मैंने एक नाटक देखा था, और वो नाटक सती चंदन वाला था, पूरी किताब लिखी थी, और बीच बीच में सती चंदन वाला नाटक ही था, तो बीच बीच में जो अपने मनोरंजन के लिए डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, हास्य प्रहसन बीच बीच में डालते हैं ना, विदूषक लोग आकर के और वो मजाक करते हैं, तो उसमें विदूषक बनाया था एक पंडित को, और पंडित की जो पत्नी है, तो वो उसने एक वाक्य मैंने पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है, जब मैं पढ़ता था तब, उसमें ऐसा पढ़ा था कि वो पंडित जी से पंडितानी कहती, चलो भोजन भोजन कर लो, भोजन भोजन की बात आती है, तो वो कही के कोई बात चल रही थी ना तत्व की, तो उन्होंने कहा विद्वान लोग भोजन का विकल्प नहीं करते, भोजन की चिंता नहीं करते, क्या उसने तो ये कहा था कि हमको कोई खाने पीने की प्रभा के पीछे हम कोई तत्व ज्ञान के विरुद्ध बात कह देंगे, धोखे में तुम मत नहीं रहना, वो ऐसा कहता है। तो वो क्या कहती है, खाना ही नहीं बनाया, तो उसने आगे कहा कि खाना क्यों नहीं बनाया, आपने कह दिया ना पंडितों को खाने की चिंता, तो उसने कहा खाने की चिंता नहीं होती है, इसका मतलब खाते नहीं है, ये थोड़ी है, तो वो उसको प्रहसन के रूप में उसमें दिया था। पर भाग्य की बात है कि उस जो जो वो पत्नी थी पंडित की, उसका नाम कमला था। वो अभी किताब होगी कहीं, अब मुझे तो मिली नहीं बहुत दिनों से, मैं पढ़ता था ना तब की बात है, तब पढ़ी थी मैंने वो किताब में, तो बार बार थे वो प्रश्न आता था बार बार, तो ये बात कि वो कहता है वो निश्चय नए की अपेक्षा से मैंने निश्चय नए वालों का मजाक उड़ाया था, क्या हाँ सुने इस तरह से तात्पर्य यह है, अब यही कह रहे थे ना, क्षयोपशम ज्ञान में जाने गए गे पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये पॉइंट, और उनके लक्ष्य से राग द्वेष रूप प्रणमन, ये दूसरा पॉइंट, और वो तीसरा भी था ना कि राग द्वेष रूप प्रणमन, लेकिन वो वहां राग द्वेष भी नहीं है तीसरे में, क्या है अस्थिरता, तीसरा कौन सा है, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान वाला, तो अस्थिरता जन्म ऐसा प्रणमन ही गेयार्थ प्रणमन है, और गेयार्थ प्रणमन ना तो केवल ज्ञानियों को होता है, और ना इस प्रकार के प्रणमन वालों को केवल ज्ञान होता है, क्योंकि वे लोग तो कर्म का ही अनुभव करने वाले हैं, अतः जिन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की कामना हो, वे गेयार्थ प्रणमन से विरक्त हो निज भगवान आत्मा में रमण करें। अभी मैं समझता नहीं हूं कि मैं कितना अधिक समझा पाया और कितना आप समझ पाए, लेकिन आप इसको दो तीन चार दफे पढ़ेंगे तो जितना लिखा जा सकता था उसमें प्रयत्न करके मैंने उस वक्त लिख दिया, ख्याल में आई ना, और वैसे भी मैं बोल के भी बता सकता था पर, लेकिन पढ़ के इसलिए सुनाया कि जिससे आपको इसकी महिमा लगे कि ये चीज इसमें लिखी है। शुरू शुरू में स्पष्ट नहीं होता है, देखो अपना शुरू शुरू में जाके पढ़ेंगे, लेकिन बर्नी जी ने निकाल दिया ना, दर्शन मोह से संबंधित, दर्शन मोह रहित, चारित्र मोह से संबंधित, और वीतराग क्षयोग समय ज्ञान से संबंधित, इसमें से अपन ने वो गुणस्थान निकाल लिए, नीचे लिखा है, यदि ये नहीं लिखते बर्नी जी और अपन नहीं पढ़ते तो उतना अपने ज्ञान में ये बात स्पष्ट नहीं होती। अब मालूम है गाड़ी किस तरफ बढ़ रही है, पहले तो ये बताया था कि केवल ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक जो द्रव्य की पर्याय है प्रति समय की, वो झलक रही है और उसमें कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है, अब उस केवल ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। अब उनको ये बताना है कि तो जो केवल ज्ञान में जो प्रणमन है उससे बंध नहीं होता है, ना तो इसी में वो गाथाएं भी आ रही हैं, 44वीं गाथा भी आएगी। जो 44वीं गाथा में वो बहुत प्रसिद्ध गाथा है कि मायाचारी वैथीणम, ये गाथा भी आएगी। ये गाथा कैसे आ जाएगी? ये कह रहे हैं ना कि गेयास बनमन रूप क्रिया, माने वो चलने का, उठने का, बैठने का विकल्प नहीं होता। तो वे कहते केवल ज्ञानी चलते तो हैं, उठते बैठते तो हैं और प्रवचन भी करते हैं। आप समझे नहीं? उनके आहार तो नहीं, उनके देहार समोषण की रचना और दिव्य ध्वनि का खिलना, तो ये क्रियाएं उनके होती हैं। तो ये क्रियाएं होती हैं तो इन क्रियाओं से संबंध से विकल्प भी होते होंगे। चलते हैं तो चलने का विकल्प भी होता होगा, नहीं भाई चलना कैसे हो गया, उसका नियामक कौन है? होगा परिद्रव्य तो नियामक है नहीं। तो अपने तो ऐसा ही होता है ना कि आपने के कहने से तो मैं नहीं चला, आपने तो मुझे नहीं चलाया, लेकिन मुझे इच्छा हुई। यहाँ तक कि उनके यहाँ तो लगा एक हो हम ब्रह्म बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं ब्रह्म में, तब हो जाकर के सारी दुनिया बनी। तो ऐसा उनकी इच्छा तो होती होगी, तो कहते इच्छा तो उनकी है नहीं, तो ये सब कैसे होता है? तो इससे उनको बंद होता है कि नहीं होता? तो इसके जवाब में उनने कहा कि वो केवली भगवान का उठना बैठना चलना और दिव्य ध्वनि का खिलना बिल्कुल सहज है दादा। अब ये सहज है, ये कहते कहते उनके मुंह से ये निकल गया कि जैसे महिलाओं में मायाचार सहज होता है, मायाचारे तीनम कैसा है 44वीं, देखो देखो राम निषेध बिहारा धम्मोपदेशोच निर्दयो तेसिम और हंताराम काले मायाचारो बेथीणम। मिला क्या नहीं मिला है? यत्न बिन ज्यो नारियों में सहज मायाचार त्यो हो बिहार उठना बैठना अर दिव्य ध्वनि अर हंत की। ठीक है ना, ठान निषेध बिहारा है ना, और धम्मोपदेशो, ये चीजें कैसे होती हैं? अब उनकी इच्छा तो रही नहीं, अब केवल ज्ञान हो गया तो इच्छा नहीं रही, तो बिना इच्छा के ये कैसे होती है? उसमें भी आता ना वो न्याय शास्त्र में आप मीमांसा आप परीक्षा में के ईश्वर तथैव ईश्वर कार्याणि कुर्याद इत्यप्यते सलम समीहा मंत्रेणा भी यथा भक्ति जिनेश्वरा तथैव ईश्वर कार्याणि कुर्याद इत्यप्यते सलम। वो कहता है कि इन्हें कहा कि तुम्हारा जो भगवान है उसे इच्छा है कि नहीं है? कि नहीं है। कि इच्छा है तो बहुत दुखी होगा, इच्छा जिसके होती वो दुखी होता। तो उन्हें कहा नहीं है, तो नहीं है तो उसने दुनिया बनाई कैसे, बिना इच्छा के कैसे बनाई? तो उसने ऐसा जवाब दिया जैसे चांटा मारा हो कि समीहा मंत्रेणापि यथा भक्ति जिनेश्वरा, जैसे तुम्हारा जिनेश्वर भगवान बिना इच्छा के उपदेश देता है, समझे ना। समीहा मंत्रेणापि, समीहा माने इच्छा, मंत्रेणापि माने बिना, यथा भक्ति जिनेश्वरा, जिनेश्वर जैसे भक्ति माने बोलते हैं, तथैव ईश्वर कार्याणि, हमारा ईश्वर भी वैसे ही बिना इच्छा के सारी दुनिया को बना लेगा। वो वैसा ही है ना कि वो तुम्हारा बास कहाँ रखा जाता था, चार आदमी रास्ता जा रहे थे तो उनने आपस में एक नक्की किया तो रास्ता कट जाए तो अपन को जिहुआ रथ पे सवार होके चलना चाहिए, माने कुछ कहानी किससे चलते रहे, बातचीत करते रहो तो रास्ता कट जाता है। तो उन्होंने कहा ये कहो कि हरेक आदमी अपनी एक एक गप सुनाओ, गप सुनाए माने कहानी सुनाए अपनी मन से, लेकिन कोई उसकी कहानी को झूठा नहीं कहेगा। जो झूठा कहेगा उसे एक घोड़ा और 1000 रुपया देना पड़ेगा। उसके पास घोड़ा था ना,
उन्हें घोड़ा लेना था क्या,
ये शर्त रख ली। अपनी अपनी बात सुनो,
अब कहा कि तुम सुनाओ, तो उसने कहा मेरे पिताजी के पास इतनी घोड़ियां थी कि एक घोड़ी पे हाथ रखे, दूसरी घोड़ी पे हाथ रखा, फिर तीसरी घोड़ी पे हाथ रखा, तो जब तक पहली घोड़ी बच्चा दे देती थी, माने 12 महीना में तो एक दफे उन पर हाथ रख पाते थे, समझिए कितनी होंगी कल्पना करो आप। तो उसने कहा सच्ची बात है, सच्ची बात है, सब कहें सच्ची बात है, क्यों झूठ कहे तो एक घोड़ा तो 1000 रुपया देना पड़ा, ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। तो दूसरा बोला मेरे पिताजी के यहाँ इतना लंबा बांस था कि जब जरूरत पड़ती थी बादलों में छेद करके पानी बरसा लेते। तो सब बोले हाँ सच्ची बात है, सच्ची बात है। एक आदमी बोला कि बात तो सच्ची है, लेकिन वो बांस खड़ा रखते थे ना, खड़ा रखते थे तो वो पानी बरसाते थे, तो कभी उसे आड़ा भी तो रखते होंगे, तो कहाँ रखते थे? किसी ने पूछा घोड़े वाले ने, तो बोला अरे उसमें क्या है, तेरे बाप की घुड़सार में एक कोने में पड़ा रहता था, इतनी लंबी घुड़सार थी ना, इतने घोड़े थे तो घुड़सार भी तो लंबी होगी, उसमें मेरा बांस पड़ा रहता था। ऐसा ही जवाब है, समीहा मंत्रेणापि यथाभक्ति जिनेश्वर, हम पढ़ते थे जब है 14 वर्ष के होंगे जब पढ़ते थे, यथाभक्ति जिनेश्वरा तथैव ईश्वर कार्याणी कुर्यादित्य प्रतिशलम, है ना। तो ये मतलब इस तरह की बात नहीं समझ लिए जाए, है ना। तो वो कहते देखो ठान निषेध बिहारा और धर्मोपदेशो, धर्मोपदेश चलना उठना विहार करना उसी प्रकार होता है बिना इच्छा के। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया मायाचारैव स्त्रीणम, स्त्रियों के जैसे मायाचार। फिर तो बहुत बहस हुई इस पर, नीचे टीका लिखी गई नीचे, तो आचार्य ने उसको वहां भी थोड़ी चर्चा तो हुई होगी, तो उन्होंने थोड़ी शहर तो उसको ठीक किया था। क्या कहा कि इस जैसे मायाचार की बहुलता स्त्रियों में होती है, उत्कृष्टता नहीं थी, फिर वो बताना पड़ता है कि अनंतानबंदी होती है, प्रत्याख्यान होती है, चक्कर में पड़ जाते हैं ना करुणा नहीं ओके। तो उनने कहा कि मतलब ज्यादा तो बहुलता होती है, बहुलता का मतलब ज्यादा व्यवहार, उनका व्यवहार माया से अवगुंडित देखा जाता है, और उसके लिए उनको कुछ होने की जरूरत नहीं है, उनके सहज सहज स्वभाव है उस पर्याय का, ऐसा ऐसे ही अरहंत पर्याय का ये सहज स्वभाव है कि उसके काल में दिव्य ध्वनि खिरे बिहार हो, ऐसा आएगी जब गाथा आएगी, जब पढ़ेंगे अपन, हो गया।